Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Acharya Swami Sri Bhagavatanandaji Saraswati Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Khal kaal asana karo, mans rand ke khao, pe jab tak ghat mein pran hai, banshi bhir bajao. बंसी फिर बजाओ, हार मांस से खा लो, ये देखो उसकी आसक्ति तो है, आसक्ति कान में हो गई, नाक में ऐसी, नाक में हमने देखा बहुत से लोग इत्र सूंघने के आदि पड़ जाते हैं, तो इत्र उन्हें न मिले तो चैन ना आवे, तो आप स्वयं समझ सके आसक्ति किस प्रकार से नचाती है. आसक्ति होना ही बुरा है. तो आसक्ति जब हो जाती है तब वो आ सकती है, जा नहीं सकती, जाती नहीं है. आसक्ति रहती है इंद्रियों की विषयों के प्रति. विषय मीठे लगते हैं. जो मुई राम लागते मीठे, तो अनरस खड़रस सब हो जाते, सब सीठे, तो सीठे हो जाते फिर मधुर नहीं लगते. तो इंद्रियों का विषयों के प्रति राग होता है और वो राग मिटता नहीं है. जैसे आंख का रूप के प्रति है, कान का शब्द के प्रति है, नाक का गंध के प्रति है. तो यूं समझिए जैसे मैले कपड़े को साबुन लगाया जाता है, साबुन मैल को धोने के लिए होता है, फिर वो भी धुल जाता है. ऐसे ही इंद्रियों पर आसक्ति छाने पर और आसक्ति बढ़ावे, भगवान की बढ़ावे, भगवान के चरणों में ध्यान करे, उनका चरणोदक ले, उनको घर भर में किंचा डालना चाहिए, पवित्रता, भगवान के चरणों पर श्रद्धा होए, विश्वास होए, तो ऐसे ऐसे आसक्ति हो जाएगी. जैसे मीरा को हो गई, शबरी को हो गई, ऐसे हो जाएगी. तो पहले क्या करते हो, साबुन लगाते हो, अस्वस्थ होने पर दवा खाते हो, फिर स्वस्थ हो जाते हो तब दवा बंद कर देते हो. ऐसे ही राग के लिए अनुराग चाहिए भगवान के चरणों में. जब अनुराग धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो प्रत्येक इंद्रिय का राग खत्म हो जाएगा. इंद्रियण इंद्रियार्थो ही रागत देशो व्यवस्थ हो, तरुण बस मांग छे तऊ यश परपंथ हो. वो चूंकि रास्ते के परपंथी हैं, उद्देश्य विनय विघ्न बनते हैं लक्ष्य में, तो इसलिए उन लक्ष्य को चूकने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमें चाहिए राग द्वेष में न फंसे. राग द्वेष जो व्यवस्था, राग द्वेष व्यवस्थित कर दिया है, तो राग द्वेष व्यवस्थित कर दिया है तो इसका मतलब राग द्वेष है इंद्रियों में. इंद्रियों का राग द्वेष ऐसा बढ़ गया है कि बहुत कष्ट होता है कभी कभी. तो दुर्निमित्त मोह बताया है. दुर्निमित्त माने मुश्किल में छूटने वाला. और क्रोध को बताया, काम को बताया दुराशद, ये पाप है. और यान त्रिमार्ग है, पितृयान और माता पिता और पितृ, चाहे कहो पुण्य पाप, पितर का ऐसे मार लगा सकते हो. दक्षिणायन में जो जाता है वो दक्षिणायन में जाने वाला पाप मार्ग चंद्र मार्ग में जाता है, उत्तरायण में सूर्य मार्ग में जाता है, तो अग्नि लोक में जाता है तीसरा पितृयान. तो अब ये हिसाब लगाया जाता है. जैसे कोई धार्मिक आदमी है और आस्तिक है और पूजा पाठ करता रहा और उसका शरीर छुटा है दक्षिणायन में, तो उत्तराभिमानी आदमी आएंगे और उत्तराभिमानी ले जाएंगे उसको उत्तरायण में, और कुछ ले कहते हैं कि नहीं मत वाले इसमें अपने अपने मत कहते हैं कि उसमें उत्तरायण दक्षिणायण की क्या जरूरत, वो तो जाता है स्वर्ग के रास्ते से जाएगा नरक के रास्ते से जाएगा, वो तो जाएगा निश्चित ही है। जो पाप कर्म करेगा वो चित्रगुप्त जी लिखते रहते हैं, बल्कि वो फोटो भी लेते हैं, जैसे कोई काम किया वो कह दिया उसने नहीं किया, जैसे 3 से 2 मुकदमा हुआ और उसने मना कर दिया कि हमने मारे नहीं, तब फिर ऐसे में चित्रगुप्त की मांगा जाता है फोटो कि लाओ धर्मराज मांगते हैं तो फोटो देखो ये है, आपके हर कार पर दृष्टि रखते हुए वो फोटो खींच लेते हैं और उस फोटो से फिर बताते हैं धर्मराज के पूछने पर। जैसे गंध की आदत पड़ गई तो चींटी होना पड़ेगा, अब भगवान चींटी में गंध की बहुत पहचान होती है, देखो कहाँ इतना छोटा जानवर और कितना वो गंध लेता है, और हड्डी के अगर मांस हुई मांस की आदत हुई तो शेर बनना पड़ेगा शेर चीता। ऐसे श्रुतियां कहती हैं काम रूप जैसी कामना होगी वैसे ही रूप धारण करना पड़ेगा, वो रूप दे देते हैं और रूप दे करके जाओ बिचरो अपने और अपने ख्याल रखना कर्तव्य का, ये कह देते हैं। कर्तव्य क्या है अपना अपना कर्तव्य समझो भाई, तो इसलिए मोह को माना गया है मोह महामोह अंध तामिस तामिस, और ज्ञान वैराग ऐश्वर्य अनैश्वर्य उधर 4 और भूम रापूर्ण लोभायु उधर 8 4 के 2 जोड़ा, तो इस तरह से ये बनता है मोह। इसलिए बताया गया कठिन कि राग द्वेष के साथ मोह जुड़ा हुआ है, मोह होता है मोह चित्ते चित्त को विक्षिप्त कर देता है, रंग जैसे रंग जाते हैं कपड़े ऐसे चित्त को रंग देता है अपने रंग में, द्वेष का द्वेष में रग का रग, जैसे दुर्योधन और कर्ण को देखो, दुर्योधन कर्ण प्रतिज्ञा करता है कि अर्जुन को मारेंगे, केवल अर्जुन से उसे द्वेष है, द्वेष की अग्नि जलती रहती है हमेशा, जलना क्यों चित्तवृत्ति व्यापार क्रोधा, चित्तवृत्ति का व्यापार है एक, जिसके प्रति मोह होगा राग होगा दुश्मनी होगी उसको जरूर एक एक कंठ को ठार न दीना तो मैं कहा कोप कर कीना, अगर इसके गले में हमने कुठार न मार दिया तो हम करी क्या करेंगे क्या, बेकार क्रोध किया हमने सफल क्रोध सफल नहीं हुआ, तो हिंसा कराता है क्रोध, हिंसा हमें कहते हैं कि हिंसा तो वेद में लिखी है, अरे तो हिंसा लिखी है वेद में छुड़ाने के लिए लिखी है, जैसे किसी बच्चे को स्कूल नहीं जाता है कहा कि भाई तुमको एक पेड़ा मिलेगा रोज जाया करो, तो एक पेड़ा का लालच नहीं है वहां, वहां विद्यालय जाने का प्रयोजन है, जैसे गंगा स्नान करो नहीं तो सब नदियां बेकार हैं, गंगा स्नान नहीं किया तो सब नदी में रोज स्नान करना बेकार, ऐसे माता पिता को प्रणाम न किया तो सब दुनिया भर को प्रणाम कर आए वो बेकार है, बेकार नहीं है उसकी महिमा बढ़ाने में वहां तात्पर्य है, महिमा ऐसे बढ़ती है, जैसे इस समय कोई कहे कि गंगा जल गंगा आज गंगा स्नान करना चाहिए और सब बेकार है, अगर गंगा स्नान नहीं किया तो व्यर्थ चला जाएगा। तो और सब व्यर्थ को निषेध करने के लिए रोकने में तात्पर्य है। गंगा स्नान करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन है अच्छी चीज गंगा अकेली नहाना, इसका गंगा की महिमा को बढ़ाने का तात्पर्य है। यहाँ गंगा की महिमा बढ़े, गंगा ऐसी है पवित्र करने वाली है, तो ये इसके तात्पर्य लेना चाहिए और अर्थ लेना चाहिए। ये तात्पर्य ये है, उनके कहने का ये अर्थ है कि उसका निषेध जिसका किया जा रहा है कि सब बेकार है, उसका निषेध में तात्पर्य नहीं है, बल्कि असली में तात्पर्य है। असली में तात्पर्य है प्रयोजनीय है। जैसे जैसे कहा जाता है कि ये सब बेकार है, अगर कुंज का स्तोत्र नहीं पढ़ा तो दुर्गा पाठ बेकार है, तो बेकार नहीं है, कुंज का स्तोत्र के महत्व में वहां तात्पर्य है। कुंज का स्तोत्र इतना महत्वशाली है कि उसके पाठ करने से अमुक लाभ हो जाता है, अमुक लाभ हो जाता है, और वो न पाठ करो, पाठ करो तो बेकार चला जाएगा। तो बेकार नहीं है, वो है तो कार, लेकिन उसकी महिमा बढ़ाने के लिए कहा गया है। उसकी महिमा, गंगा जी की महिमा या कुंज का स्तोत्र की महिमा बढ़ाना वहां मुख्य तात्पर्य है। तो सीतासुर नृसिंह का ये चौथा मंत्र है, इसमें कहते हैं नेमी एक लीक है, लीक को कहते हैं तिब्रत, तीन पट्टी लगी हुई है, खोज सार है, 16-11 इंद्रियां और 5 भूत, ये 16 बताए तिब्रत हैं। और फिर बाद में बताया कि तिब्रत है तो वो आधा 50 वो होंगे अरे, इसके अरे होते हैं जो मिलाते हैं तिब्रत को, और अरे अरे न हुए तो कहते हैं लोग, अरे न हुए तो पहिया न चले, अरे अरे समझते हो आप, अरे हाँ अरे हुई, वो 50 होते हैं। और विंशति प्रत्यारे, अरे में कीलें लगी होती हैं, वो 20 हैं। और अशक्ति और खडबिर ये अष्टक बनाए, 6 अष्टक हैं, और दुर्निमित्त दो प्रकार का मोह है। तो मोह का वर्णन चल ही रहा था, मोह क्या है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया कि मोह ही योनि लाता है। अगले जन्म में क्या होंगे ये पहले बता देता है, जो इच्छा होगी जो कामना होगी उसी प्रकार से होगा। कामना जो है वो ये कामना नष्ट कर देती है, जीवन की बुद्धि बिगाड़ देती है कामना। कामना प्रीत की कालिमा है, और भगवान से जोड़ने के लिए कामना करना चाहिए तो नाशवान से अपने आप टूट जाएगी। जब भगवान से जोड़ने की कामना होगी तो नाशवान से अपने से टूट जाएगी। तो ये जो कहा गया, यह एका तिष्ठति कारणानि अखिलानि तानि यत्, संपूर्ण कामनाएं जितनी हैं, कारण जो बताए नृति से लेकर के काल से लेकर आत्मा तक, सृष्टि के बनाने के में जो कारण आए उनमें एक ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान है, वो सबका अधिष्ठान है। जैसे बताया पेड़ का उदाहरण दिया, पेड़ में गुठली से लेकर के और तना तक सब कारण है, ऐसे ही ब्रह्म में, ब्रह्म एक अधिष्ठान समझो, वो सर्वाभाषक है, सर्वाधिष्ठान है, सबका अधिष्ठान है, सबका कारण मूल कारण वही है। तो इसलिए उसको समझना चाहिए। और विपर्य पांच हैं, तम मोह महामोह और तामस अंधतामस। शक्तियां 28 हैं। हाँ, अरिमा गरिमा लगमा, ये सिद्धियां, सिद्धियों की निंदा की गई यहां। सिद्धियां बताई कि अरिमा गरिमा छोटे से बड़ा हो जाए, बड़े से छोटा हो जाए, और बड़ी वजनदार हो जाए, कोई चीज हल्की हो जाए, तो ये सिद्धियां हैं। लेकिन सिद्धियों की निंदा की गई है। सब जगह भागवत में भी बताया कि सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियों के चक्कर में पड़ने से व्यक्ति अपना भूल जाता है, अपना करना भूल जाता है। और सिद्धियों के चक्कर में, सिद्धियां क्या है? संसार से सम्मान देंगी, सामान देंगी, और क्या देंगी? आपको बोझ थोड़ी कराएंगी। तत्त्वमसि महाभाग थोड़ी उनके पास है वो। तो इसलिए सिद्धियों की निंदा की गई। सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियां ऐसी होती हैं कि ये सिद्धियां ही नीचे गिरा देती हैं। व्यक्ति संसार के चक्कर में क्यों पड़ता है? ये सिद्धियां क्यों चाहता है? सामान मिले, सम्मान मिले, यही संसार के पास है। तो संसार में फंसने के लिए ये सिद्धियां आती हैं। ये है 9, 8 सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नव निंद के दाता अस्वर दीन जानकी माता। जानकी माता ने दी है, हनुमान जी को प्राप्त हुई हैं। अच्छा, 6 योग, शमदम तितिक्षा उपरति, ये योग हैं, ये मिलाने वाले हैं। शम माने मन का निग्रह, और दम माने इंद्रियों का निग्रह, उपरति माने शरीर का। शरीर थोड़ी बहुत सर्दी हो, थोड़ी बहुत गर्मी हो, सह लो, सहन करना चाहिए। सहन करना तो बहुत लाभप्रद है। और भी बताया है, सहन करो, कोई क्रोध करे, कोई कामना करे, कोई लोभ करे, तो दूसरे को देखो, अपने देखो, हम लोभी हैं कि नहीं, कितने अंश में है, कितने अंश में छुट रहा है। ये बात बड़ी बढ़िया है उपनिषद की, ये बात कही कि ये देखते रहना चाहिए। आत्मनिरीक्षण इसको कहते हैं। जैसे रास्ता में चल रहे हो तो कितनी रास्ता चल गए, ये मील बता देते हैं। मील लगे होते हैं, इतनी रास्ता चल गए। तो ऐसे साधना में ये सोचना चाहिए, काम क्रोध लोभ कम हुए कि नहीं हुए, रास्ता कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। साधना करते समय आत्मनिरीक्षण भी करना जरूरी है, ये करते रहना चाहिए, जिससे ये पता चल जाए कि इतने हम चल गए हैं, इतना मार्ग और रह गया। तो अभ्यास ऐसा हो जाही चाहिए कि तस्मान सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरयुद्ध च, माने काम भी करते रहो और नाम भी जपते रहो। तो ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि एक महात्मा आते हैं, वो गोपाल का नाम आता है, तो वो जीभ पकड़ते थे शौच के समय में भी। तो उनसे कहा, जीभ क्यों पकड़े हो? कहे, महाराज इतना अभ्यास हो गया है, ये समय भी बोलती रहती है, राम 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 राम। इसके लिए बंद, गुरु जी ने बताया कि शौच समय नहीं जपना चाहिए, और इसको अभ्यास हो गया है, ये जपती रहती है, इसलिए इसको पकड़े मजबूत कि न बोले। तब गुरु जी ने कहा कि ऐसा अभ्यास अगर है तो फिर तुम जप करो, करो भैया तुम जप। शौच शौच की कोई बात नहीं, मन से होता है। तो मन जीभ न खुले, ऊंट न खुले, तो अशुद्ध अवस्था में भी कर सकते हो। प्रकृति ज्ञान किसी को, प्रकृति जो ज्ञान देती है वो किसी को देती है, और प्रकृति का मालिक सबको देता है। प्रकृति माने स्वभाव होता है। स्वभाव जैसे इनकी प्रकृति कैसी है, ठंडी है कि गर्म है, क्या चाहती है, क्या चाहती है, संघात परार्थत्व, संघात दूसरे के लिए होती है। प्रकृति अगर कहा जाए कि उनकी प्रगति ऐसी बन जाती है, दुर्योधन की दुर्योधन जैसी और युधिष्ठिर की युधिष्ठिर जैसी, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में सत्ता भगवान की है। भगवान की सत्ता तो सब में है ना, दुर्योधन में भी है और उसमें भी है। दुर्योधन की दूसरी वृत्ति है अंतःकरण शुद्ध है धर्मराज का, और उसका अशुद्ध है। अंतःकरण की शुद्धा और शुद्धि की बात होती है, सचमुच में सत्ता तो सबकी बराबर ही है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसकी बात दूसरी है, और जिसका अंतःकरण अशुद्ध है उसकी बात दूसरी है। वो दुर्योधन की तरह चलता है। दूसरी बात एक यह है कि जैसे ये गिनाए गए कि इसकी नेमी है, इतने 28 हैं, ये हैं, तो ये इसलिए बताए गए कि जिसे ध्यान रहा है कि ब्रह्म चक्र भी है, एक है जैसे आला चक्र की तरह कोई लकड़ी में आग लगाता है फिर घुमाता है गोल गोल, तो ऐसे आला चक्र होता है, जैसे ब्रह्म चक्र है। दिन है, जैसे जन्मदिन मनाते हो कि हमारी एक वर्ष हो गई, ये वर्षगांठ है, तो उस दिन ये करना चाहिए, खूब भगवान का कीर्तन करावे जिस दिन जन्मदिन हो या वर्षगांठ हो या और कुछ हो, कीर्तन करें। और ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, एक वर्ष हमने क्या किया, एक वर्ष निकल गई, एक वर्ष में हमने क्या किया। तो यदि कुछ विकार कम हुए हों, संस्कार पड़े हों, तो संस्कारों की ओर बढ़ना चाहिए, विकारों की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। विकार तो ऐसे ही हैं, संस्कार अगर पड़ेंगे जीवन में तो काम देंगे, तो संस्कार के ओर ध्यान देना चाहिए। और संस्कार की ओर ध्यान देने से ये होगा कि एक तो लाभ स्पष्ट होगा, कहते हैं उससे लाभ होता है। पद्माचार्य जी पढ़े लिखे नहीं थे, हस्तामलकाचार्य वो सब लोग हंसते थे, ये शंकराचार्य जी जब ये आ जाता है तब क्यों पढ़ाते हैं। किसी विशेष को गुरु जी के प्रति मोह हो गया, गुरु जी के प्रति ये हो गया, शंका हो गई कि जब ये आता है मूर्ख है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, तभी पढ़ाते हैं, तब तक पाठ बंद रहता है। तो हंसा मल्काचार्य जी घड़ा भर के गंगा जी से 200 फुट नीचे लाते, जोशी मठ में रहते थे उस समय शंकराचार्य जी, और नीचे से गंगा जल कितने ऊपर है, गंगा जल भर के घड़ा भर के और सिर पर धर के लाते थे रोज। एक दिन शंकराचार्य जी रात में मिल गए, अरे तुम भाई बड़ा सेवा करते हो, इतना मन में मालूम था, और ज्ञान हो गया उन्हें, ज्ञान हो गया, न ब्रह्मचारी न ग्रही वनस्थी न भिक्षु न चाहम निज बोध रूपा, हम अपने बोध स्वरूप में हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, न हम ग्रही हैं न वनस्थी हैं, न कुछ नहीं है, निज बोध रूप। ये उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, अरे ये कैसे जान गया, ये तो कुछ नहीं जानता था। तो ये सिद्धि हो गई, शक्तिपात, शक्तिपात जिसको कहते हैं, शक्तिपात ऐसे नहीं होता, महापुरुष की सेवा करने से अपने आप शक्ति निकलती है और उसमें से प्रविष्ट हो जाती है, ऐसा नहीं है शक्तिपात छू मंतुर कोई हो और हाथ रख दे और हो जाए, शक्तिपात नहीं होता, शक्ति उसमें होती जरूर है। जैसे शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया हस्तामलक, इसलिए ये सिद्धियां नहीं है, ये तो सामान्य चीज है, किसी महापुरुष की सेवा करने से जो तो मिल जाए। अब उपनिषद में आती है कथा, 400 गायें थी, 400 गायें ले जाओ, जब तक ये 1000 हो जाए तब तक लाना नहीं, तो वो 1000 हो गई, तो एक दिन सांड ने उन्हें उपदेश दे दिया। अब देखो 1000 गांवों की सेवा करना कितना कठिन होता है एक आदमी को, लेकिन सेवा से ही वो मुक्त हो गया, सेवा से लाभ हुआ, सेवा से सेवा करते करते उनको आभास हो गया ज्ञान का। तो ज्ञान किसी तरह से हो सकता है, ज्ञान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान किसी सेवा से हो सकते हैं, किसी सेवा से। लेकिन सिद्धियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। उदाहरण ये दिया कि ऐसी सिद्धि थी शंकराचार्य जी को, ऐसी सिद्धि हम भी प्राप्त कर लें, ऐसी सिद्धि ये सिद्धि नहीं है। कल बोलो सियावर रामचंद्र की जय।